ब्राह्मण जीवन में चलते चलते कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम भारीपन का अनुभव करते हैं। स्टार्टिंग में जब आते हैं बाबा के पास, बहुत उमंग उत्साह में रहते हैं, नशे में रहते हैं और उड़ते रहते हैं। यह नशा रहता है कि परमात्मा को पहचान लिया, भगवान मिल गए, तो इतना अंदर से मन से हम नाचते रहते हैं, केवल बाबा बाबा बाबा, और बाबा का ज्ञान और योग, इसी पर हमारा ध्यान रहता है। तो इसीलिए खुशी का अनुभव हम करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत इधर का देखते हैं, थोड़ा बहुत उधर का देखते हैं, व्यर्थ देखना शुरू करते हैं, व्यर्थ सोचना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि तभी हमने शुरू किया है व्यर्थ सोचना, पहले भी सोचते थे, लेकिन बीच में थोड़ा सा बंद हो गया था, क्योंकि हम वो रूहानी नशे में थे, है ना। जब ज्ञान नहीं था उस टाइम पे तो बहुत सारे नेगेटिविटी भी था और व्यर्थ भी बहुत खूब सारा था। लेकिन जैसे जैसे बाबा का परिचय मिला, थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन आना शुरू हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो संस्कार है पूरी तरह भस्म ना होने के कारण से वो बीच बीच में पनपता है, बीच बीच में ऊपर उड़ता है। और व्यर्थ को समझना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। ब्राह्मण बन जाने के बाद बहुत ज्यादा करके नेगेटिविटी खत्म हो जाता है, जो मुख्य जो विकार है वो तो पहचान में आ जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो ये मोटे रूप का है वो तो पहचान में आ जाता है। गुस्सा आया तो पहचान में आ गया कि मुझे गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है, थोड़ा सा ईर्ष्या द्वेष हुआ तो समझ में आ जाता है कि ये नकारात्मक भावनाएं मेरे अंदर आ रहे हैं। लेकिन व्यर्थ उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि व्यर्थ है स्लो पॉइजन की तरह। एक बार पूरी तरह विष दे दे तो फिर वहां ही व्यक्ति खत्म हो जाता है, लेकिन स्लो पॉइजन, एक बूंद, हर रोज एक बूंद विष जा रहा है शरीर में, पता नहीं चलता है कि मेरे शरीर के अंदर विष जा रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है, कई दिनों के बाद पता चलता है कि मेरे शरीर में वो विष का अंश बढ़ता जा रहा है ना। ऐसे ही व्यर्थ स्टार्टिंग में पता नहीं चलता, लेकिन धीरे 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 जब बढ़ जाता है, एक विकार का रूप ले लेता है, तब पता चलता है कि कहीं ना कहीं जड़ है व्यर्थ, है ना। जैसे माताएं किचन में जब सब्जियां साफ करती हैं तो छिलके उतारते हैं, है ना, जब साफ करते हैं तो वो छिलके उतार करके कहीं मतलब डस्टबिन में डाल दिया, वो नकारात्मक नहीं है, वो वेस्ट है, वहां कीटाणु तुरंत नहीं आते, जर्म्स तुरंत नहीं आते, लेकिन दो दिन छोड़ दिया, चार दिन वहां ही छोड़ दिया डस्टबिन में, क्या होगा, वहां बदबू बढ़ना शुरू हो जाता है, कीटाणु आना शुरू हो जाता, मच्छर मक्खी आना शुरू हो जाएगा। जब डाला उस समय वो नकारात्मक नहीं था, लेकिन वहां ही रहने दिया चार पांच दिन, फिर वो नकारात्मक हो गया, ऐसे ही हमारे अंदर भी वो व्यर्थ संस्कार है, कहीं ना कहीं वो रिपीट होते 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 वो बहुत बड़ा रूप ले लेता है, नकारात्मक संस्कार का रूप वो ले लेता है। फिर उसको भगाने की कोशिश करते हैं लेकिन जड़ तक हम नहीं जा पाते हैं, केवल ऊपर ऊपर से हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से उसको देख करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे पेड़ को ऊपर से काट रहे हैं, जड़ से हम उखाड़ नहीं रहे हैं, है ना। जड़ से उखाड़ना माना जो व्यर्थ संस्कार मुझ आत्मा के अंदर है उसको रिकग्नाइज करके रियलाइज करके उसको निकाल देना। बाबा कई मुरलियों में कहा है परिवर्तन का आधार क्या है। हम परिवर्तन के पथ पर हैं, हर रोज हम अपने आप को परिवर्तन करने की कोशिश में लगे हुए हैं, पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, लेकिन सालों सालों से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। कुछ लोगों का परिवर्तन बहुत इजीली बहुत जल्दी नजर आ रहा है, लेकिन कुछ आत्माओं का इतने लंबे काल पुरुषार्थ करने के बाद भी वो परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। वो क्यों है, वो कारण क्या है? बाबा ने कहा है रियलाइजेशन की शक्ति, महसूस करने की शक्ति। जब तक खुद को रियलाइज नहीं होगा मुझ आत्मा के अंदर ये कमी है, ये कमजोरी है, तब तक हम परिवर्तन कर नहीं सकते। दूसरे लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं इस आत्मा में अभिमान बहुत है, लेकिन मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे अंदर अभिमान है, ईगो है, वो मुझे पता नहीं चल रहा है, तो परिवर्तन नहीं होगा। जिस दिन मुझे समझ में आ गया कि मेरे अंदर वो विकार है, नेगेटिविटी है, तो उस दिन से हम पुरुषार्थ करना शुरू करते हैं। इसीलिए हमें अपने अंदर झांक करके देखने की जरूरत है, मुझ आत्मा के अंदर कौन से ऐसे कमी है, कौन से ऐसे कमजोरी है या फिर व्यर्थ संस्कार है, वो हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। जब आइडेंटिफाई करेंगे, रियलाइज करेंगे, फिर हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं। हम वो उस समय ये ना कहे बाप रे मेरे अंदर ये विकार है, ये नकारात्मक संस्कार है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं है तो सही, ठीक है, उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर बाबा को मैंने कहा कि बाबा मुझ आत्मा के अंदर ये नकारात्मक या व्यर्थ संस्कार है, प्लीज मुझे मदद करिए उसको निकालने। तो बाबा की मदद लेकर के हम उस संस्कार को दग्ध भस्म हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले रियलाइजेशन की शक्ति, महसूस करने की शक्ति। महसूस जब कर लिया तो आधा काम खत्म हो जाता है, आधी बात पूरी हो जाती है। तो इसीलिए रियलाइज, आज आप अपने अंदर झांक करके देखें। ऐसा नहीं कि हम परफेक्ट हैं, कोई समझते हैं कि हम तो बहुत परफेक्ट हैं। ऐसे कौन है इस सभा में जो कहते हैं मैं तो परफेक्ट हूं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, ऐसा कोई है? कोई है? अगर परफेक्ट होते तो यहां नहीं होते, कर्मातीत बन चुके होते। तो फिर कर्मातीत जब आत्मा बन जाती है तो शरीर त्याग कर लेती है, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी कमजोरी है, तो इसीलिए हम इस शरीर में अब तक हैं। तो पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो नकारात्मक संस्कार को तो कई बार हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन व्यर्थ वो कौन से संस्कार है जो व्यर्थ है, जिसको हमें खत्म करने की जरूरत है। गुलजार दादी एक बार ज्ञान सरोवर में बहुत सुंदर क्लास करा रहे थे और उन्होंने बहुत सुंदर बात कही थी कि व्यर्थ के 5 दरवाजे हैं। व्यर्थ के 5 दरवाजे हैं, वो कौन कौन से हैं? क्या, क्यों, कैसे, कब और कौन। ये 5 दरवाजे हैं। अगर ये प्रश्न उठ गया कि ये क्यों हो रहा है, कोई भी ड्रामा का दृश्य देख करके ये प्रश्न उठता है ये क्यों हुआ ऐसे, तो क्यों माना, क्यों का लंबा क्यों लग जाता है। ये नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, वो क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए, ये इतना पुराना भाई है, पुराना ब्राह्मण है, तो ये फिर भी इसने ऐसा किया, नहीं करना चाहिए। क्यों का जब लग जाता है, बहुत लंबा जब लग जाता है, तो वो भारीपन महसूस होता है। बाबा ने उसका जवाब भी दिया हुआ है। उसका जवाब क्या है? बाबा ने कहा है वाई नहीं फ्लाई करो। क्यों का इंग्लिश में क्या है? वाई, है ना। तो वाई जब प्रश्न उठता है तो बाबा ने कहा ये प्रश्न निकालो, उसके बजाय वहां फुल स्टॉप लगा करके उड़ जाओ। कौन उड़ सकता है? कौन उड़ सकता है? कोई जो हल्के हैं, जो लाइट हैं, वही उड़ सकते हैं। जो भारी हैं, वो जितना भी उड़ने की कोशिश करे वो नीचे ही आना शुरू करते हैं, उड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए एक्स्ट्रा जो वेट है वो सब कुछ निकाल देने की जरूरत है। जब हम यात्रा पर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, आप लोग भी दूर दूर से यहाँ ट्रैवल करके आए हैं, लगेज आपका बहुत थोड़ा ही होता है, जितना बहुत आवश्यक सामान है उसी को आप बैग में डालेंगे, जो अनावश्यक चीजें हैं वो नहीं डालेंगे। जो 4 दिन के लिए बहुत आवश्यक चीजें हैं उसी को आप बैग में डालेंगे, है ना। लगता है कि इसके बिना 4 दिन चल जाएगा, उन सभी चीजों को निकाल देंगे। क्यों? थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान लेके आए तो आराम से रह सकते हैं ना। फिर भी हम एक्स्ट्रा लगेज उठाने के लिए सोचते हैं, एक्स्ट्रा लगेज नहीं लाना पसंद करते हैं जब ट्रैवल करते हैं। इसलिए कहते हैं ट्रैवल लाइट। अगर आपको एंजॉय करना है अपनी यात्रा को, अपने लगेज को लाइट रखना कहते हैं। लेकिन जीवन रूपी यात्रा में हमारा लगेज यहां, वेट यहां बहुत भारी है कभी कभी, उसके कारण से हम इतना भारीपन महसूस करते हैं, इतना मायूस हो जाते हैं। फिर एक दूसरे को जब हम मिलते हैं पूछते हैं भाई कैसा चल रहा है, बहन कैसा हो रहा है, कैसा चल रहा है, तो जब भारीपन है तो चेहरे पर दिखाई देता है ना, फिर कहने में आता है कि हाँ चल रहा है, चल रहे हैं, हो रहा है, जैसे कोई बहुत भारी चीज सिर पर है और इसको घसीट के ले जा रहे हैं। ब्राह्मण जीवन खुशियों का जीवन है, मौजों का जीवन है। अगर हम खुश नहीं हैं तो कौन खुश हो सकता है? हम हल्के नहीं हैं तो कौन हल्के हो सकते हैं? लेकिन देखा जाता है कहीं ब्राह्मणों का चेहरा इतना मायूस, इतना भारी क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सबसे ज्यादा हिसाब किताब किसका है? सबसे ज्यादा हिसाब किताब इस संसार में किसका है? ब्राह्मणों का है। है ना, हमने ही सबसे ज्यादा जन्म लिया है, 84 जन्म हमने ही लिया है। किस किस को पक्का निश्चय है कि हमने 84 जन्म लिया है, हाथ उठाए। 84 से 83 जन्म भी लिया है किसी ने, 83 जन्म भी लिया है किसी ने, पूरे 84 जन्म लिया है ना सभी ने। जब 84 जन्म लिया है तो हर जन्म में कुछ ना कुछ हमने बोझ लिया है। चले सत्युग और त्रेता तो चलो वो तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन द्वापर से हर एक जन्म में जब शरीर छोड़ा, कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ व्यर्थ, कुछ ना कुछ भारीपन आत्मा के ऊपर हम लेते चले आए हैं, है ना। तो इसीलिए अभी अभी जो आत्माएं ऊपर से उतर रही है, उन आत्माओं के अंदर इतने सारे गुण हैं, क्षमताएं हैं, और बहुत जल्दी तरक्की करते हैं वो जिंदगी में। उनको देख करके फिर हमें फीलिंग आता है, हम ब्राह्मण होने के बाद भी, बाबा के बच्चे होने के बाद भी हमारी जिंदगी ऐसा क्यों है। उनकी जिंदगी बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे जिंदगी में इतने सारे समस्याएं, इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों है, ये प्रश्न उठता है। ये क्यों प्रश्न उठा, माना फ्लाई हम नहीं कर पाते हैं। और उसका उत्तर क्या है, उसका उत्तर क्या है, दूसरी आत्माएं इतना इजीली, इतना सहज रूप से उड़ रहे हैं, हम क्यों उड़ नहीं पा रहे हैं, हम जिंदगी में खुश क्यों नहीं है, हमारे पास इतने समस्याएं क्यों है, क्यों है, उसका उत्तर क्या है, उसका उत्तर क्या है, अपने ही हिसाब किताब है, अपने आत्मा का हिसाब किताब है। जब तक हम चुकतू नहीं करेंगे तब तक हम हल्के नहीं हो सकते। लेकिन खुशी की बात यह भी है कि हमें चुकतू करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाबा के बच्चे हैं, थोड़ा बहुत पुरुषार्थ कर लिया, बहुत लिफ्ट मिल जाता है। बाबा में निश्चय है ना, बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ करके जन्म जन्मांतर का जो पाप है वो बहुत जल्दी हम खत्म कर सकते हैं पुरुषार्थ के आधार से। बाबा की मदद पूरी तरह केवल हम बच्चों के लिए है, है ना, ये खुशखबरी है। तो थोड़ा बहुत पुरुषार्थ कर लिया तो अनेक जन्मों का जो पाप कर्म है वो भस्म कर लेते हैं। ये हम, हमारे पास वो भाग्य है, लेकिन दूसरे आत्माओं के पास वो भाग्य नहीं है। लेकिन पुरुषार्थ जब हम नहीं करते हैं, बाबा को टीचर हम नहीं बनाते हैं, तो कौन टीचर बन जाता है? बाबा कहते हैं बाबा के साथ बाप टीचर सदगुरु का संबंध जोड़िए, तो बाबा को टीचर बना करके उनकी शिक्षाओं को के ऊपर अमल करते हुए, धारण करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी हम हल्के हो सकते हैं, बहुत जल्दी हमारा बोझ जो है वो निकल जाता है। लेकिन जब बाबा को टीचर नहीं बनाएंगे तो कौन टीचर बन जाता है, कौन टीचर बन जाता है, ड्रामा। आज मदर्स डे भी है, बाबा तो माँ है ही है, लेकिन ड्रामा भी माँ है, और माँ के साथ साथ वो टीचर भी है, है ना। अगर बाबा को टीचर बना करके पुरुषार्थ नहीं किया, ड्रामा में ऐसा कोई ना कोई परिस्थिति आ जाएगी, ऐसे कोई ना कोई घटनाएं घट जाएगी, फिर हम पछताएंगे, पश्चाताप के अग्नि में हम जलते रहेंगे, फिर हम पुरुषार्थ करने की कोशिश करते, फिर हम परिवर्तन करने की कोशिश करते, तो फिर वहां मार्क्स हमारा कट हो जाता है, है ना। तो इसीलिए बाबा ने जो हमें श्रीमद दिया हुआ है उसको अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं, फिर ये सभी प्रश्न जो है वो नहीं आ सकता। जब भी ये प्रश्न उठे मन में, बुद्धि में, वहां ही उसका उत्तर दे दीजिए, है ना। क्यों हो रहा है, क्यों नहीं, हर एक का उत्तर हमारे पास है, तो क्यों को फुल स्टॉप लगा करके हम फ्लाई करें। फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। व्यर्थ के दो और दरवाजे हैं, ये तो पांच प्रश्न तो वो दरवाजे है ही है, दो और दरवाजे हैं, स्थूल दरवाजे, वो है आंख और कान। आंखों से जो भी हम देखते हैं, जो देखना चाहते हैं वो नहीं देखते हैं, तो हमारे नजर, हमारी दृष्टि अगर नेगेटिव है, व्यर्थ के तरफ हमारा ध्यान जा रहा है, तो फिर व्यर्थ चिंतन चलना शुरू हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं पर दर्शन, पर चिंतन और पर मत। सबसे पहले शुरू होता है पर दर्शन, दूसरों को देखना शुरू करते हैं। दूसरों को भले हम देखें, लेकिन दूसरों को देखते हुए क्या देखें हम, हा? वो आदत है ना, संस्कार है दूसरों को देखने की। भले हम देखें, लेकिन क्या देखें दूसरों में, हा? केवल गुणों को देखें, सकारात्मक संस्कारों को देखें, सकारात्मकता को देखते चलते हैं, पॉजिटिविटी को देखते चलते हैं, तो पॉजिटिविटी को हम ग्रहण करते हैं। बाबा ने एक मुरली में बहुत सुंदर बात कही है, पर दर्शन, इन आंखों से हम दूसरों को देखते हैं ना, आंखों की मोती होते, मोती ही नहीं हो तो भी वो खत्म देख नहीं पाते, मतलब फुल स्टॉप। जो भी हम नेगेटिविटी देख रहे हैं वहां हम फुल स्टॉप लगाएं, फुल स्टॉप लगा, जब हम वहां ही लगा देंगे तो हमारा जो चिंतन है पर चिंतन नहीं हो सकता। पर दर्शन में ही हम फुल स्टॉप लगाया, वहां ही हमने रोक लगा दी, तो पर दर्श, पर चिंतन तक हमारा वो जाता ही नहीं है। दृष्टि से वृत्ति बनता है, वृत्ति से स्थिति बनती है, है ना। तो इसीलिए दृष्टि को हमें बहुत संभाल करके यूज करने की जरूरत है। बाबा के यज्ञ में जब हम आते हैं, बाबा कहते हैं आपको पैर छूने की जरूरत नहीं है, नमस्कार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दृष्टि से एक दूसरे को ग्रीट करना है और एक दूसरे को जो शक्ति है दृष्टि से आदान प्रदान करना है। क्यों बाबा ने ऐसी बात कही है? क्या आशीर्वाद हाथ रखने से शक्तियों का संचार नहीं होता, पैर छूने से शक्तियों का संचार नहीं होता, दृष्टि से ही क्यों? बाबा ने इन दोनों दरवाजों को तो बंद कर दी, आशीर्वाद का भी बंद कर दिया। स्थूल रीति से दुआएं तो देनी है, वो तो है ही है, लेकिन स्थूल रूप से पैर छूने की आशीर्वाद लेना की लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन दृष्टि, बाबा ने कहा दृष्टि को शुद्ध करना, एक दूसरे को दृष्टि देते हुए एक दूसरे को ग्रीट करना, वो क्यों बाबा ने कहा? क्योंकि सबसे ज्यादा शक्ति दृष्टि से संचारित होता है, है ना। तो उसको अगर हम सकारात्मक दिशा के तरफ हम उसको चैनलाइज कर लेते हैं, तो शक्तियों का संचार हमारी दृष्टि से बहुत कुछ हम परिवर्तन कर सकते हैं। दादियों की एक दृष्टि के लिए हम तरसते थे, है ना, बाबा से दृष्टि लेने के लिए। एक सेकेंड बाबा के सामने, अव्यक्त बाबा आते थे तो एक सेकेंड हम बाबा से दृष्टि लेने के लिए तरसते थे। उस दृष्टि में इतनी शक्ति भरा हुआ होता था। एक बार मुझे याद है कि ओम शांति भवन में बाबा मधुबन निवासियों से मिल रहे थे, और उसके पहले मैं बहुत जैसे आत्मा ड्रेन आउट हो गई थी, बहुत थक गई थी, जैसे बहुत ऐसे कुछ घटनाएं घटी थी तो आत्मा जैसे ना मायूस, जैसे निशक्त ऐसे महसूस कर रही थी। मुरली चली, मुरली होने के बाद, मुरली के दौरान भी ज्यादा कुछ मुझे इतना महसूस नहीं हुआ क्योंकि मेरी स्थिति इतना अच्छा नहीं था। मुरली का आनंद तभी हम ले सकते जब हमारी स्थिति अच्छी होती है। स्थिति अच्छी नहीं थी तो मुरली का आनंद इतना नहीं ले पा रही थी, लेकिन जब समय आया स्टेज पर जाकर के दृष्टि लेने की, एक सेकंड की दृष्टि बाबा की, उसके बाद आत्मा के अंदर इतनी शक्ति का संचार हो गया जैसे कुछ भी, नया नई शक्ति, नया उमंग, नया नई उत्साह जैसे वो भर गया आत्मा के अंदर, है ना। वो भगवान की दृष्टि थी। और बाबा के बच्चे, हम भी तपस्या करके अपनी दृष्टि को इतना श्रेष्ठ, इतना शक्तिशाली बनाए, क्योंकि आने वाले समय में ज्ञान देने का समय नहीं होता, केवल दृष्टि से काम चलाना पड़ेगा। दृष्टि से साक्षात्कार हो जाता है। जब यज्ञ के आदि काल में भी जब भाई बहने आते थे, बाबा दृष्टि देते थे, दृष्टि देते ही वो वतन में चले जाते थे, ट्रांस में चले जाते थे। वो दृष्टि का कमाल था। बाबा कई मुरलियों में कहते हैं कि आदि सो अंत, है ना। तो अंत में भी ऐसा दृश्य आने वाला है। हम आत्माओं की जवाबदारी है। अगर अभी तक हमारा व्यर्थ चल रहा है तो शक्तियों को हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। जब हमने इकट्ठा नहीं किया है, स्टोर नहीं किया है, हम उन शक्तियों का दान भी नहीं कर पाएंगे, है ना। कहाँ लीक हो रहा है वो हमें चेक करके उस लीकेज को वहां ही बंद करने की जरूरत है, है ना। थोड़ा बहुत लीक हो रहा है लंबे काल में, वो चलते चलते जो एक तरफ हम भट्टी करके, तपस्या करके, ज्ञान योग करके हम आत्मा को शक्तिशाली बना रहे हैं, सबको स्टोर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लीक हो रहा है। तो फिर जो हम स्टोर कर रहे हैं वो फिर व्यर्थ जा रहा है ना। एक तरफ मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन दूसरे तरफ व्यर्थ भी जा रहा है। इसीलिए जो मेहनत कर रहे हैं वो व्यर्थ ना जाए, इसीलिए वो लीकेज को हमें बंद करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हमारा दर्शन, हमारी दृष्टि कहाँ जाता है वो हमें चेक करने की जरूरत है। जहां भी जाए वो केवल सकारात्मकता को देखे। इसीलिए शास्त्रों में स्वदर्शन चक्र श्री कृष्ण के हाथ में दिया हुआ है। स्वदर्शन को सुदर्शन भी कहते हैं, है ना। दूसरों को जब हम देखते हैं, अच्छी बातों को देखे, वो सुदर्शन हो गया। स्व को जब हम देखा वो स्वदर्शन हो गया। ये चक्र अगर हमारे पास है तो माया का गला हम काट सकते हैं, और सतयुगी दैवी दुनिया में आने के लिए हम लायक बन सकते हैं। और दूसरा दरवाजा जो है वो कान है। व्यर्थ का दरवाजा कान है। इसीलिए बाबा ने कहा है, महारथियों के कान में एक छोटी सी चींटी भी चली जाए ना, वो हाथी मूर्छित हो जाता है, है ना। वो इतना खतरनाक है कान, है ना। तो इसीलिए वो चींटी भी न जाए, इसके अंदर प्रश्न, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, थोड़ा भी इधर उधर की बातें जो मेरे साथ कनेक्टेड है ही नहीं है, ये भाई ऐसा कर रहा है, ये बहन ऐसी कर रही है, वो ऐसा कर रहा है, तो वो सभी बातें जो मेरा कनेक्शन है ही नहीं, हाँ ऐसा चल रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये आश्चर्य आया, माना वहां फेल है ना। तो वो चींटी जाने न दे कान के अंदर, उसको बंद करे। आंख को फिर भी हम बंद कर सकते हैं, हमें देखना नहीं है तो आंख बंद कर सकते हैं, लेकिन कान को हम बंद भी नहीं कर, उसके लिए कोई दरवाजा नहीं है, कोई बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है, तो वो तो हम उसको कान को हम बंद भी नहीं कर सकते हैं, वो तो जा रहा है, लेकिन हम उसका उसको अंदर ना ले, है ना, वृत्ति ना बनाए उसको, है ना। वृत्ति माना वृत्त साइकिल, नेगेटिविटी और व्यर्थ का भी साइकिल चलता है, एक शुरू हो गया, क्यों क्या से शुरू हो गया, फिर चक्री चलता रहता है, चलता रहता है, ऐसा नहीं होना, ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, लगातार उसका चक्र चलता रहता है, लगातार किसी के बारे में मैंने सोचा, लंबे काल तक मैंने सोचा, तो वो वृत्ति बन जाता है, रिपीटेड, कितने बार हमें रिपीट करती हूं उस बात को, वो फिर वृत्ति बन जाता है। तो नेगेटिव और व्यर्थ को हम रिपीट ना करें, लेकिन सकारात्मकता को हम रिपीट करें। इसीलिए भक्ति मार्ग में मंत्र जाप लोग करते हैं, 108 बार, हजार बार, 10,000 बार, 16,000 बार, वो मंत्र जाप क्यों करते हैं, रिपीटेड। जितने बार हम रिपीट करते हैं उसकी ताकत बढ़ता है। केवल मुख से रिपीट करने की बात नहीं है, मन से, जितने बार ज्ञान की बातों को मैं रिपीट करती जाऊंगी, फिर वही वृत्ति बन जाएगा, वो वृत्ति मेरा पॉजिटिव हो, शक्तिशाली वृत्ति बन गया, फिर मेरी स्थिति भी शक्तिशाली बन जाता है। तो इसीलिए सूक्ष्म से सूक्ष्म जो मेरा अपना संकल्प है, विचार है, भावनाएं हैं, वो तो व्यर्थ जाने न देना है, वो तो है ही है, लेकिन वृत्ति, मेरे दृष्टि जहां जा रहा है, मेरा वृत्ति वहां बन रहा है, उसको हमें चेक करने की जरूरत है और उसको परिवर्तन करने की जरूरत है। तो कई बार इसके अलावा जो प्रश्न हम हमारे अंदर कभी कई बार आता है ना, आखिर कब तक, है ना, पांच प्रश्नों में से अक्सर करके क्यों यह प्रश्न ज्यादा आता है, और दूसरा प्रश्न अक्सर हमारे अंदर आता है कब तक, है ना। विनाश, बाबा ने कहा है कि विनाश होगा होगा होगा, कब तक, यह प्रश्न कब आएगा, जब हम थके हुए होते हैं, पुरुषार्थ करते करते कहीं ना कहीं हम थके हुए हैं, फिर यह प्रश्न उठता है कब तक। इतने लंबे काल से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, कई बार एक पर्टिकुलर संस्कार पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस पर मुझे विजय पाना है पाना है पाना है, लेकिन विजयी नहीं हो रहे हैं। फिर बाबा को बजा करके बोलते, बाबा इतना मैं पुरुषार्थ कर रही हूं, फिर भी ये संस्कार मेरे से छूट नहीं रहा है, ये भस्म नहीं हो रहा है, कब तक। उसके लिए क्या है जवाब, क्या है जवाब, बाबा ने कहा है अभी अभी परिवर्तन करना है, कब है वो प्रश्न नहीं पूछना है। लेकिन दूसरी बात ये भी है, हम अगर डेट कॉन्शियस हो जाते हैं तो वर्तमान में हम अपना ध्यान नहीं रख सकते हैं। एक ऐसे एक शिष्य था, वो बहुत छात्र था कि मुझे अपने जीवन को परिवर्तन करना है, एक अच्छी गुरु के तलाश में था। वो ढूंढते 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 एक अच्छे गुरु के पास वो चला गया और उसने सबसे पहले ये पूछा कि गुरु ने उनको इनवाइट किया, वेलकम किया। फिर उसके बाद उस शिष्य ने गुरु को पूछा कि मैं आप जैसे कब तक बन सकता हूँ, कितने साल में आप जैसे मैं बन सकता हूँ। गुरु ने कहा 5 साल लगेगा आपको बनने में। उसको बहुत निराश हो गया वो बालक। उसने कहा कि 5 साल, 5 साल तो बहुत लंबा समय है, मैं अभी अभी 1 साल 6 महीने में मैं आपके जैसे बनना चाहूंगा। तो उसके लिए अगर मैं दिन रात मेहनत करूं, पुरुषार्थ करूं, तो कितने साल में लगेगा मैं आप जैसा बन सकूं। तो गुरुजी ने कहा 10 साल लगेंगे। फिर उसको आश्चर्य लगा, मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो फिर और डबल टाइम लगेगा। फिर उसने कहा कि थोड़ा भी समय वेस्ट ना करूं, हर घड़ी हर समय मैं पुरुषार्थ करूं, मेहनत करूं, तो फिर कितना समय लगेगा। तो गुरुजी ने कहा 15 साल लगेंगे। ऐसे कैसे गुरुजी, मैं जितना ज्यादा मैं मेहनत करूं उतना ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसा क्यों? तो गुरुजी ने कहा कि अगर आपका ध्यान समय पर है, 1 साल में मुझे यहां तक पहुंचना है, 5 साल तक मुझे यहां तक पहुंचना है, ये सोच करके अगर आप मेहनत करोगे तो माना आपका एक नजर समय पर है और एक नजर पुरुषार्थ पर है, तो आपका मेहनत आधा हो गया ना, है कि नहीं? तो इसीलिए उस समय को ना देखते हुए पूरी तरह ध्यान रख करके वर्तमान समय, आज के दिन, अभी का समय, मेरा पुरुषार्थ, मेरी स्थिति, मेरी वृत्ति, मेरी भावनाएं क्या है, उस पर हम ध्यान देते चलेंगे तो भविष्य तो उज्जवल होना ही है। तो इसलिए कब नहीं, अब। कब के बारे में नहीं सोचना है, अभी का समय में मेरी स्थिति कैसा है, मेरी वृत्ति क्या कैसा है, मेरी भावनाएं क्या, हर आत्मा के प्रति मेरी शुभ भावना है, शुभ विचार है, हर आत्मा के प्रति मेरी दुआएं हैं, ये हमें देखते चलना है और आगे बढ़ते चलना है। और ऐसे हम आगे बढ़ते चलेंगे तो सभी लीकेजेस हमारा बंद हो जाएगा, व्यर्थ से मुक्त हम समर्थ स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति।